प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आपको हमारा नमस्कार। कार्यक्रम सत्य वचन में आपका हार्दिक स्वागत है। श्रोताओं, जैसा कि आपको मालूम है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से हम पवित्र शास्त्र बाइबल का क्रम अनुसार अध्ययन किया करते हैं, जो हमें आध्यात्मिक बातों को समझने और आगे बढ़ने में हमारी सहायता करता है। इन दिनों हम पौलुस प्रेरित द्वारा लिखी गई इफिसियों के नाम पत्री का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं और श्रोताओं, हमें विश्वास है कि इस अध्ययन से आपको आध्यात्मिक लाभ मिल रहा है। तो आइए, इससे पहले कि इस अध्ययन में हम सम्मिलित हों, प्रस्तुत है एक मधुर संगीत रचना।
चा प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थ्य नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और आशा करता हूँ कि आप सब भी परमेश्वर की निकटता में रहते हुए कुशल पूर्वक हैं और फिर से आज परमेश्वर के वचन में से सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मित्रों, आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और देखेंगे इफिसियों के पत्री 5 अध्याय उसके 28 पद से। लेकिन इससे पहले आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से आज के अध्ययन के लिए सहायता मांगे। हमारे जीवित और सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए जिसे आपने हम सबके जीवन में दिया है, ताकि प्रभु हम आपके जीवित और सामर्थ्य वचन का फिर से एक बार अध्ययन कर सकें। आज हम इफिसियों की पत्री से अध्ययन करते हैं। हमारी प्रार्थना है कि आप हमें से प्रत्येक को अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान कीजिए, ताकि आज हम जो कुछ भी सुने, समझ सके, सीख सके, अपने जीवन में ग्रहण कर सकें। हमारी प्रार्थना उन भाई बहनों के लिए है जो बीमार हैं, निराश हैं, चिंतित हैं, तनाव में हैं, व्याकुल हैं। पिताजी, आप उनकी सुधि लीजिए, उनकी सहायता कीजिए, उन्हें अपनी शांति प्रदान कीजिए, इस अध्ययन पर अपनी आशीष दीजिए। धन्यवाद के साथ विनती यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, हम देख रहे थे कि पौलुस दो विषयों को लेकर तुलनात्मक रूप से आगे बढ़ रहा है, पति पत्नी और मसीह कलीसिया। वह मसीह और कलीसिया की चर्चा करने के बाद फिर से पति पत्नी के संबंधों पर आ जाता है। पति अपने अपनी पत्नी से अपनी देह के समान प्रेम रखे। तब हम देखेंगे इफिसियों की पत्री 5 अध्याय उसके 28 से 32 पद में। आप निकाल लीजिए और मेरे साथ पढ़िए। लिखा है, इसी प्रकार उचित है कि पति अपनी अपनी पत्नी से अपनी देह के समान प्रेम रखे। जो अपनी पत्नी से प्रेम रखता है वह अपने आप से प्रेम रखता है, क्योंकि किसी ने कभी अपने शरीर से बैर नहीं रखा, वरन उसका पालन पोषण करता है, जैसा मसीह भी कलीसिया के साथ करता है, इसलिए कि हम उसकी देह के अंग हैं। इस कारण मनुष्य अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। यह भेद तो बड़ा है, पर मैं यहाँ मसीह और कलीसिया के विषय में कहता हूँ। मेरे प्रियो, विवाह में नव दंपति को भोज की आवश्यकता नहीं है, उन्हें पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने की आवश्यकता है। यह उनका सबसे बड़ा सौभाग्य होगा। आज दंपति यौन शिक्षा में प्रवीण होंगे, परंतु वे न तो सच्चा प्रेम जानते हैं और न ही मसीही विवाह की सुंदरता, हर्षातिरेक और मृदुता को जानते हैं। पति के लिए पत्नी से प्रेम करना इसलिए आवश्यक है कि विवाह पत्नी को उसकी अपनी देह का अंग बनाता है, जैसे कलीसिया मसीह की देह है और मसीह उसका सिर है। इस आधार पर पति पत्नी का सिर है। मनुष्य के लिए अपनी ही देह से घृणा करना स्वाभाविक नहीं है। अतः पति अपनी पत्नी से इसलिए प्रेम करता है कि वह उसकी अपनी ही देह है। मसीह कलीसिया की दुर्बलता को जानते हुए उसकी देखभाल करता है और उससे प्रेम करता है। पति को भी ऐसा ही करना है। पद 31 उत्पत्ति की पुस्तक 2 अध्याय उसके 24 पद का उद्धरण है। पौलुस यहाँ अदन की वाटिका में रहते समय आदम और हवा के संबंधों का संदर्भ दे रहा है। यह पहला दंपति मसीह और कलीसिया के भावी संबंधों का प्रतीक है। हवा आदम की सहायक बनाई गई थी, वह आदम की पसली से निकाली गई थी। अन्य प्राणियों की नाई मिट्टी से नहीं बनाई गई थी। जब तक वे दोनों एक नहीं हुए, तब तक आदम अधूरा ही था। उसे परमेश्वर ने रचा था और मेरे विचार में वह जब आदम के पास लाई गई तो वह सृष्टि की सबसे अधिक आकर्षक रचना थी। किसी ने कहा है कि हवा को आदम से अधिक सुंदर आदम की रचना करके परमेश्वर को अनुभव प्राप्त हो गया, जिस अनुभव से उसने फिर हवा को बनाया। वह आदम की सहायक थी, अर्थात वह आदम की कमियों को पूरा करती थी। वह उसके लिए बनाई गई थी और वे एक हो गए। इब्रानी भाषा में पुरुष के लिए इश शब्द है और स्त्री के लिए इशा, दोनों शब्द मिलते जुलते हैं और वह आदम में से निकाली गई थी। मेरे पास पति पत्नी के संबंध के इतिहास से 2 उदाहरण हैं। आज ऐसे संबंध लगभग खो चुके हैं। आधुनिक नैतिकता और यौन स्वतंत्रता अनेक विश्वासियों को बंदी बना रहे हैं। यह सफल नहीं होगा। परमेश्वर की इच्छा है कि विश्वासियों में यह संबंध बड़े ऊंचे स्तर पर हो। मेरे प्रियो, इससे पूर्व कि पेरिस विश्वविद्यालय स्थापित होता, वहां एक शिक्षक एवं प्रचारक था। वहां के अधिकारी की एक भतीजी थी जिसे उसने उस शिक्षक के अभिरक्षण में रख दिया कि उससे शिक्षा ग्रहण करे। दोनों ही असामान्य व्यक्तित्व के मनुष्य थे। उन्हें एक दूसरे से प्रेम हो गया, परंतु फादर को विवाह करना बड़ी लज्जा की बात थी। इस कहानी की प्रस्तावना में लेखक के शब्द अभिव्यक्तियां मनमोहक, मधुर और चितचोर हैं। आदम और हवा को जब वाटिका में से निकाल दिया गया था, तब भी वे जहां जहां जाते वहां वहां एक अनंत सुंदर फूल देखते थे। यह फूल दृढ़ निश्चय का प्रतीक था, जिसके बिना विरले ही आनंदित हुए रहते थे। चतुर, रहस्यमय, अबोधगम्य, एक महान वरदान जिसे कवि और नैतिकवादी, अन्य जाति और विश्वासी बराबर मान्यता देते हैं। जी हाँ, आनंद ही नहीं, मानवीय अस्तित्व द्वारा ही पहचाना जाता है और आत्मा की सर्वोच्च प्रेरणा से संबंधित है। अस्थायी एवं नाश्वर, वरन दुर्बल एवं नाशमान से जुड़ा होते हुए भी यह प्रकृति से अमर और लक्ष्य में गर्वान्वित है। एक मनोवेश, एक भावना और एक प्रेरणा, हमारे जटिल स्वभाव के इस गुण में जो उसके आकर्षण का कारण है, उसके बिना एक स्त्री का वर्णन करना व्यर्थ है। केंद्र भाग के बिना यह चित्र अधूरा है, नायिका बिना उपन्यास है, धर्म बिना बलि चढ़ाना है। मेरा विषय ऐसा नहीं है कि उसमें कठिनाइयां नहीं है। मनोवेग और भावनाएं विकारों के कारण अपमानित होते हैं, जबकि परिशुद्ध होने से सम्मानित होते हैं। मैं अवगुण नहीं एक सद्गुण, दुर्बलता नहीं शक्ति, अस्थाई नहीं स्थाई, नाश्वर नहीं अनाश्वर का चित्रण प्रस्तुत कर रहा हूं। नायक और नायिका को चर्च से विवाह की अनुमति नहीं मिलती है, अतः वे गुप्त विवाह करते हैं। परंतु उनके सेवक ने भेद खोल दिया और नायिका को मसीही सन्यासियों के मठ में भेज दिया जाता है। अब यदि आप जानते हो इस कहानी के नायक से एवेलाई, जो 12वीं शताब्दी के एक महान एवं निर्भीक प्रचारक एवं शिक्षक थे, उनका कहना था कि परमेश्वर का वचन कलीसिया का अपना नहीं, आम मनुष्य का अधिकार है। यह महापुरुष अपने शिक्षाओं में कड़वाहट से भर गया, व्यंग्यात्मक हो गया था, क्योंकि उसे अपने अधिकार से वंचित किया गया था। वह कहानी की नायिका से 20 वर्ष बड़ा था। मरण शय्या पर उसकी अंतिम इच्छा थी कि उसे नायिका से मिलने दिया जाए, परंतु कलीसिया ने अति निर्दयता से इसका इनकार कर दिया। अतः उसने नायिका को एक अत्यधिक दर्द भरा पत्र लिखा, जिसमें उसकी अंतिम प्रार्थना थी, हे प्रभु, जब तेरी भली इच्छा हुई और तू प्रसन्न हुआ, तब तूने हमें जोड़ा और अलग भी किया। अब तूने जो ऐसी करुणा से आरंभ किया उसे पूरा भी कर, और इस संसार में अलग करने के बाद हमें स्वर्ग में अनंत काल के लिए एक कर दे। मैं पूरा विश्वास करता हूं कि स्वर्ग में वे एक होंगे। जॉन वेस्ली की कहानी भी ऐसी ही है। जब वह सुसमाचार सुनाने के लिए अमेरिका गए थे, तब राजा ने किसी कुलीन प्रचारक को वहां पहले से ही भेज दिया था। वह देखने में आकर्षक नहीं थे, अतः वे उनसे मुक्ति पाना चाहते थे। परंतु वहां की प्रथा के अनुसार कुलीन मनुष्य सर्वोत्तम व्यक्ति से विवाह कर सकता था। अतः उसने एक विश्वासी, प्रभावी व्यक्तित्व की अनुपम सुंदरी से विवाह कर लिया। इसी बीच वहां एक दहकता हुआ प्रचारक आया और एक स्त्री से प्रेम करने लगा। उसने अपने मंगेतर से वादा भी किया कि वह उसके साथ रेड इंडियन के मध्य चले, परंतु उसने कहा, नहीं जॉन, परमेश्वर ने तुम्हें इंग्लैंड के लिए बुलाया है। उसने आपको एक महान कार्य के लिए बुलाया है। उसे इंग्लैंड लौटाने वाली वही थी। जब उसका जहाज प्रस्थान की प्रतीक्षा में था, वह आई और दोनों ने एक दूसरे का आलिंगन किया। उसका बड़े से बड़ा आलोचक भी कहता है कि उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया। जॉन वेस्ली की जीवनी लिखने वाला कहता है कि 2 बार वे जहाज में चढ़ने वाले तख्ते तक लौटे, परंतु उसने जॉन को इंग्लैंड भेज ही दिया कि मेथोडिस्ट चर्च के साथ जीवन बिताए। यद्यपि वह हताश होकर इंग्लैंड लौटा, परंतु वह उसकी प्रेरणा का स्रोत बनी रही। परमेश्वर आत्मा से परिपूर्ण विश्वासियों को ही ऐसा प्रेम देता है। आज युवा वर्ग से कहता हूं, परमेश्वर के सर्वोच्च से कम कुछ स्वीकार न करें। इफिसियों की पत्री 5 अध्याय उसके 33 पद में लिखा है, पर तुम में से हर एक अपनी पत्नी से अपने समान प्रेम रखे और पत्नी भी अपने पति का भय माने। यहां पर शब्द पर, यह शब्द हमें एक झटके के साथ पृथ्वी पर ले आता है। यह विवाह में व्यवहारात्मक पक्ष है। पाप ने इस महिमा को कैसा धूमिल कर दिया है, परंतु यह संबंध यदि आप चाहें तो यथाउचित आपका भी हो सकता है। पौलुस पाठक को मसीही परिवार की जीवन शैली में ले आता है। हर एक अपनी पत्नी से अपने समान प्रेम रखे। यह एक ऐसे पति को प्रकट किया गया है जिसके अधीन पत्नी को रहना है। पति पत्नी को परिवार में अति सरलता से भावी महिमा का प्रकाशन करना है। यह एक अति उच्च विचार का व्यवहारिक पक्ष है। वह रोमांस को वास्तविकता में ले आता है। मेरे मित्रों, यहाँ पर अब अध्याय 5 समाप्त होता है और अब हम अध्याय 6 में आते हैं, जिसका विषय है कलीसिया एक सिपाही है, सिपाही के संबंध, सिपाही के बैरी, सिपाही की सुरक्षा, सिपाही का उदाहरण। पौलुस मसीह का एक अच्छा सिपाही था। और इसके बाद आशीर्वाद। पिछले अध्याय में कलीसिया को दुल्हन कहा गया था, मसीह की दुल्हन, और अब इस अध्याय में कलीसिया को मसीह यीशु का एक अच्छा योद्धा यानी कि सिपाही बनना है। मेरा एक मित्र व्यंग करता है कि यह पद विवाह पश्चात जब पति पत्नी में युद्ध होता है तब व्यवहार में लाना चाहिए के बारे में है। वह बड़ा ही विनोदशील है। भविष्य में कलीसिया एक दिन दुल्हन की नाई सुंदर बनकर मसीह को सौंप दी जाएगी। यह कलीसिया की आशा है। आज संसार में कलीसिया के प्रदर्शन और उसकी मंगनी का समय है। यह अध्याय विश्वासियों के जीवन का एक और पक्ष प्रकट करता है, एक योद्धा का। इफिसुस नगर में प्राचीन संसार के 7 आश्चर्य कर्मों में से एक डायना का मंदिर था। वह एक अत्यधिक अनैतिक अन्य जातीय स्थान था। अतः उन विश्वासियों को भली भांति जान लेना था कि उनका एक वैरी है जो उस समय के विश्वासियों का ही नहीं आज के विश्वासियों का भी है, जो डायना की उपासना से भी अधिक खतरनाक है। आज अनैतिकता अन्य जाति धर्म में नहीं मसीह धर्म में है, जो मसीही विश्वास है ही नहीं। अध्याय का प्रथम भाग संतान, माता पिता, दास और स्वामियों के लिए निर्देश से पूर्ण है, जो एक सिपाही के जीवन के लिए एक असामान्य बात है। सिपाही का प्रशिक्षण सेना शिविर में नहीं, घर में आरंभ होता है। मेरे मित्रों, आज सेना में युवाओं के प्रशिक्षण की समस्या उत्पन्न हो रही है, क्योंकि उन्हें घर में जिन छोटी छोटी बातों का प्रशिक्षण प्राप्त कर लेना था, युवा अवस्था में सेना प्रशिक्षण कैंप में सिखाने की आवश्यकता पड़ रही है। उनका कहना है कि वर्दी पहनाना तो आसान होता है, परंतु उन्हें प्रशिक्षार्थियों को वर्दी में उतारना पड़ता है, जो एक अत्यधिक कठिन काम है। अतः एक योद्धा का प्रशिक्षण घर में आरंभ हो जाना चाहिए, कलीसिया या संडे स्कूल में नहीं। वह बालक जो पहला पाठ नहीं सीख सकता विकलांग हो जाता है। हमारे युवाओं की महान समस्याएं, वरन वयस्कों की भी यही समस्या है कि वे घर में सही शिक्षा नहीं पाते। उचित प्रशिक्षण का अर्थ है अनुशासन। आइए अब हम देखेंगे सैनिक के संबंध। इफिसियों के पत्र 6 अध्याय के 1 पद में लिखा है, हे बालको, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। ध्यान दीजिए, यह उचित इसलिए है कि यह प्रभु में अर्थात परमेश्वर की इच्छा में है। सच तो यह है कि यह उचित से अधिक है। यह एक धार्मिकता है, क्योंकि यह परमेश्वर का मार्ग है। योद्धा का सबसे पहला पाठ होता है अपने से बड़े अधिकारियों की आज्ञा मानना, उसे आदेशों का पालन करना चाहिए। यह प्राथमिक प्रशिक्षण घर में दिया जाना चाहिए। आदेश देना तब ही आएगा जब आज्ञा मानना सीखा जाएगा। यह आधारभूत शिक्षा हमें माता पिता और बच्चों के संबंधों से प्राप्त होती है, इसके पश्चात दास स्वामी के संबंध से, मसीही जीवन की विजय घर में और कार्यस्थल में प्राप्त होती है। मेरे मित्रों, आपको स्मरण होगा कि यीशु के लिए कहा गया है कि जब वह बालक था तब वह नासरत नगर में रहता था और यूसुफ और मरियम के अधीन बड़ा हो रहा था। इस पद वरण इस भाग में दो आवश्यक बातें हैं जिस पर ध्यान रखना अति आवश्यक है। पहला है, पौलुस यहाँ एक मसीही परिवार के बारे में चर्चा कर रहा है, वही मसीही परिवार जिसकी चर्चा उसने अध्याय 5 में की थी जब वह विवाह के संबंध में निर्देश दे रहा है। माता पिता की आज्ञा मानना बच्चों के लिए प्रभु में की परिधि में है। विश्वासी माता पिता को यह सौभाग्य प्राप्त है कि वे अपनी संतान को प्रभु के लिए दावे में लाएं। हम सबको ऐसा ही करना है, चाहे माता पिता में एक ही विश्वासी हो, वह अपनी संतान को परमेश्वर के दावे में रखे। पहला कुरिन्थियों की पत्री 7 अध्याय के 14 पद में पौलुस कहता है, ऐसा पति जो विश्वास न रखता हो वह पत्नी के कारण पवित्र ठहरता है, और ऐसी पत्नी जो विश्वास नहीं रखती है पति के कारण पवित्र ठहरती है, नहीं तो तुम्हारे बाल बच्चे अशुद्ध होते परंतु अब तो पवित्र हैं। जी हाँ, परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि माता पिता के विश्वासी होने से बच्चे भी विश्वासी हो जाते हैं। इसका अर्थ यह भी नहीं कि माता पिता को ऐसे बच्चे का दावा करना है। ध्यान दे, लिखा है अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो। मैं उस बच्चे के लिए अत्यधिक सहानुभूति से पूर्ण हो जाता हूँ जो स्वयं तो विश्वास में आ जाता है परंतु उसके माता पिता विश्वास में नहीं होते। ऐसे समय में उस बच्चे को माता पिता की अपेक्षा परमेश्वर की आज्ञा मानना चाहिए। दूसरा है, यहाँ आज्ञाकारी शब्द का अर्थ वह नहीं जो अध्याय 5 के पद 22 में अधीन का अर्थ है। पत्नी का स्थान पति की बराबरी का है, वहाँ अधीन का संबंध सिर से है। बालकों को वैसे ही आज्ञा पालन करना है जैसे दासों को अपने स्वामी का। यही शब्द पद 5 में आया है, आज्ञा मानो। माता पिता की आज्ञा न मानना इस पृथ्वी पर अराजकता की अंतिम और अत्यधिक तुच्छ अवस्था है। दूसरा तीमुथियुस की पत्री 3 अध्याय उसके 1-2 पद में पौलुस कहता है, यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले कृतघ्न होंगे। माता पिता की आज्ञा न मानना अंतिम दिनों का एक लक्षण है। आज हमें माता पिता की आज्ञा न मानने वाले अनेक बच्चे देखने को मिलते हैं। हो सकता है कि आपके बच्चे भी ऐसा ही कर रहे हैं। संतान माता पिता की हत्या भी करती है। यह सब हमारे समय के लक्षण हैं। मेरे प्रियो, युवक के जीवन में माता पिता के अधिकारों को चुनौती देने का समय अब आता है जब उसे अपना परिवार बसाना होता है। परमेश्वर ने उसे वह स्वभाव दिया है कि एक समय वह माँ का लाडला होने का विरोध करे। परमेश्वर चाहता है कि वह अपने पैरों पर खड़ा हो। यह विद्रोह, स्वतंत्रता का संघर्ष आज्ञा ना मानने से अलग है। मुझे स्मरण आता है कि मैं एक ऐसे परिवार में गया जहां उनके बालक के कारण हमारा वार्तालाप लगभग असंभव हो रहा था। उसने मुझे बताया कि उस बालक से आज्ञा मनवाना उनके लिए अत्यधिक कठिन था। पिता 100 किलो का था और पुत्र 15 किलो का था, परंतु वह बालक पिता के वश में नहीं था। जी हाँ, परमेश्वर चाहता था कि पिता बालक को उस आयु में आज्ञाकारी बनाए और पिता के लिए यह अनिवार्य भी था। हो सकता है कि आज आपके जीवन में भी ऐसी ही स्थिति है। मेरे प्रियो, आइए आज हम अपने बालकों को आज्ञाकारी बनाएं, उन्हें शिक्षा प्रदान करें और हम माता पिता भी उन बच्चों से प्रेम करें ताकि हमारा परिवार बना रहे। पौलुस आज हमें इसी बात को समझा रहा है कि हम अपने बच्चों को घर में ही तैयार करें ताकि वे बच्चे विश्वास में, परमेश्वर के डर और भय में और वचन की संगति में बढ़ सकें। मेरे मित्रों, यहाँ पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है। मुझे आशा है कि इस अध्ययन के द्वारा आपने अवश्य ही अपने परिवार में, अपने बीच में आशीष को प्राप्त किया है। प्रभु आप सबकी सहायता करें।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। इन्हें प्राप्त करने के लिए आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं। कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए। कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। और हमारा दूसरा नंबर है 09651433397। याद रहे 09651433397। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
बोलिए सबसे यीशु की बातें, मैं किस तरह